आइए अब कुछ जिक्र उस आज़ादी की रात का करते हैं। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। आज़ादी की इस रात सरहद की दोनों तरफ कैसा माहौल था, आज 70 साल बाद इस तकसीम को देखने वाले कुछ अफराद हमसे बातचीत कर रहे हैं। और पहले आइए आपको मेलबर्न में मुकीम अब्दुल खालिक काजी की बातचीत सुनाते हैं, जो आज 88 बरस की उम्र में तकसीम के वक्त को याद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अब्दुल खालिक काजी साहब की ये बातचीत।
इस चमन के फूलों पर
रंगो आब तुमसे है,
हमारे साथ मेलबर्न से मौजूद हैं जनाब अब्दुल खालिक काजी साहब। काजी साहब ये फरमाइएगा, 88 साल की तकरीबन आपकी उम्र है, आपको जरा पीछे लेके चलते हैं और उस जमाने की याद दिलाते हैं जब तकसीम हिंद का जमाना था, यानी पाकिस्तान का कयाम अमल में आ रहा था, आज से 70 साल पहले। उस वक्त तकरीबन आप नौजवानी की उम्र के होंगे, 16-17 साल की उम्र के होंगे, तो ये बताइए आप कहाँ थे उस वक्त?
कराची में था। हाँ, तारीख पाकिस्तान के, मैं कुछ वक्त कराची में था और कुछ वक्त बहावलपुर में था, रियासत बहावलपुर का जो मेन शहर है बहावलपुर।
यानी तकसीम हिंद के वक्त भी आप कराची में ही मुकीम थे?
हाँ, कराची में ही थे, मेरी पैदाइश वहीं की है। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक रोड़ी सखर से है, मेरी वालदा का ताल्लुक बलोचिस्तान से है।
और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं।
यानी जब पार्टीशन हुई तो जाहिर है कि मैं उस वक्त भावलपुर में मदरसा, कंटेम्पररी मदरसा था, वहाँ मैं पढ़ रहा था।
तो क्या भावलपुर में भी बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम खानदान भी आबाद थे जो पार्टीशन के वक्त वहाँ से चले गए?
बिल्कुल बिल्कुल, गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे। पार्टीशन हुई तो उस वक्त कराची में था।
कराची में उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्योंकि महाजरीन का एक इन्फ्लक्स था, यानी वहाँ हिंदुस्तान से जो हिजरत करके आने वाले थे बड़ी तादाद में कराची आ रहे थे। उस वक्त वो दारुल खिलाफा पाकिस्तान का करार पाया था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी तशरीफ ले लाए थे। उस वक्त पार्टीशन से पहले वहाँ किस तरह का माहौल था, कुछ नर्वसनेस पाई जाती थी या
इंटीरियर में? यो या बड़े शहर होंगे, हैदराबाद, शिकारपुर में इनकी अच्छी खासी आबादी थी, शिकारपुर इनके पैरिस, इनका पेरिस भी था, यानी वहाँ बिजनेस भी था, तालीम भी थी, ज्यादा दूसरे शहरों में भी आबाद थे। पर कराची वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी, उसमें मुसलमान ज्यादा अक्सरियत में थे, लेकिन हिंदू भी थे, ईसाई भी थे और उस वक्त यहूदी भी थे। अच्छी खासी आबादी पारसीज की थी
जी।
और वो अब तक आबाद है। तो कराची बस क्वार से कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जिस स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ हिंदू लड़के भी थे, मेरे वाले साहब के साथियों में दफ्तर में काम करते थे, पूरा अमन तौर पे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। And I think I'm happy to say that they suffered no persecution or no particular civil disturbance. But ye aur baat hai ke us tarikh ke baad transfer of people from one area to another began to take place. Koi pata hai na ke zyada taur to ye fasadat jo hai ko UP ki taraf hue, Delhi wagaira. तो वहाँ से जैसे बागरस आए तो उसके साथ जाहिर है कि उनकी सैड स्टोरी, उनकी ट्रेजेडीज अफेक्टेड लोकल पीपल। पंजाब बिकेम डिवाइडेड एंड पीपल मूव फ्रॉम अनदर। एंड जो सिखों का दौर था, बट आई वाज नॉट इन पंजाब प्रॉपर, जहाँ हम थे देयर वाज सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई ऐसी सेरेमनी या उनकी आमद या ऐसा कोई मौका हुआ, क्या आपको भी उनको देखने का कभी मौका मिला?
जल से जो 27 रमजान यानी 14 अगस्त को जो हुआ, वो कराची में तशरीफ लाए और एक प्रोसेशन हुई, लाइक ऑल यंग पीपल विद स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट। हम उस जलसे में शरीक हुए, जुलूस में नहीं यानी स्पेक्टेटर्स में, ने उनको गुजरते हुए देखा, कहते अरे ये उनकी गाड़ी है।
पूरा ये सफर पाकिस्तान बनने से लेके और आज तक का देखा है, क्या मशवरा देंगे आप इन दोनों ममालिक को के रहने वालों को?
मैं वही मशवरा दूंगा जो हम ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म पार्ट ऑफ सोशल फिलोसफी एज वेल एज पॉलिटिकल फिलोसफी। अगर हम यहाँ मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं और चर्चेज भी हैं, तो हम अपने मुल्कों में इस तरह क्यों नहीं रह सकते? ये चीजें बाद अवकात सियासी तौर पर उभारी जाती हैं, एक्सप्लोर किए जाते हैं, वोट कैचिंग के सबब, लेकिन मेरे ख्याल में अब इतने पाकिस्तानी, इतने इंडियन यूके वगैरह में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, उस दौर से निकल चुके हैं।
ये चमन तुम्हारा है,
तुम हो नगमा।
हिंदुस्तान का बंटवारा कई खून रुलाने वाली कहानियां भी रकम कर गया। बलवंत सिंह चड्ढा गैर मुनकसम पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, वो उस वक्त को किस तरह याद करते हैं, आइए उनकी कहानी सुनें। हमारे साथ इस वक्त सिडनी में मुकीम बलवंत सिंह चड्ढा साहब भी मौजूद हैं। का ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने बंटवारा देखा है, यानी तकसीम हिंद और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब कयाम अमल में आया एक अलहदा आज़ाद ममलिकत की हैसियत से, वो ज़माना उन्होंने देखा है। ये वो ज़माना था जिस वक्त दो अलग अलग मुल्क वजूद में आ रहे थे। क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी?
6 साल।
और कहाँ थे आप उस वक्त?
मैं जेहलम में था। जेहलम
जो कि पाकिस्तान में है।
हाँ, गुसाइयां वाली गली। और मेरे पेरेंट्स कैनिया में थे, फिर जब मैं 41 दिन का था तो जेहलम चले गए क्योंकि वहाँ हमारी प्रॉपर्टी बहुत थी।
जेहलम का इलाका पाकिस्तान में जाने वाला था, तो क्या वो वक्त कैसा था, जरा शेयर कीजिए।
वो बहुत खौफनाक था क्योंकि भाई आपस में लड़ने लगे, जो भाईचारा था सब टूट गया। हम तो वहाँ जब थे 47 के पहले, और ट्रेन चल रही थी, ट्रेन आ रही थी इंडिया से या पाकिस्तान से जा रही थी, तो हम अखीरली जो लास्ट ट्रेन थी उसमें थे। तो वो भी इस तरह, क्योंकि मेरे वालदा जो थे वो केनिया में थे, मेरी बहन थी, दो बहनें, मेरा बड़ा भाई और मेरी मदर और एक मेरी छोटी बहन, तो हम सबसे अखीर में आए क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग थी, वो आपने जो फिल्म शायद देखी होगी हु डू यू थिंक यू आर, उसमें गुरिंदर चड्ढा का उसमें मैंने बताया है क्या है क्या नहीं हूँ। तो वो जो हमारा घर देखने को गए थे, जो हमारा मकान था, महल बहुत बड़ा था, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि मारामारी होती थी शाम को, तो क्योंकि हमारा घर ऊपर था, थड़ा बड़ा था, तो वहाँ लोग आ जाते थे, तो मैं छोटा सा था, वो सब छतों पर चढ़ जाते थे, दरवाजे बंद कर देते थे, और फिर मारामारी हो जाती, जो वहां से आए को जो हमारे साउथ में मोहल्ला था वहां से लोग आ जाते थे, कोई नॉर्थ मोहल्ला था वहां से आ जाते थे कि हम बच गए। और अकेली जो ट्रेन थी हमको तो उठाकर स्टेशन पर छोड़ दिया, पता नहीं किस आर्मी के बंदे ने हमको वो ट्रेन के अंदर डाल दिया, तो हम वहां 3 दिन पड़े रहे। दिस इज व्हाट हैपेंड। और आई लॉस्ट माय सिस्टर देयर, और लोगों ने अपनी लड़कियां लड़के आदमियों ने मां गुवाई, खाने को था नहीं, पीने का था नहीं, पेशाब टट्टी सब ट्रेन में चल रहा था, भरी हुई थी ट्रेन।
और फिर आप कहाँ पहुंचे वहां से?
वहां से मुझे जब तक याद है हम बेहोश पड़े थे, हमको वहाँ उन्होंने मेरे ख्याल में सोनीपत या पानीपत से उतार दिया। तभी कोई जानने वाला नहीं था, हम तो स्टेशन पर पड़े थे, और वहां से पूछ के जो बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ से भाई छोड़ के गए हैं घर, आप उसके अंदर चले जाइए। तो हम वहां से निकल के, जितना हमारे पास सामान तो था नहीं क्योंकि सामान तो वहीं रह गया पाकिस्तान में, सब रह गया जो भाई हमारे छोड़ के पाकिस्तान गए थे, उनके जो मकान था या छोटा सा उनका जो कुफिया था वहां रहने लगे, वहां खाना पीना शुरू किया। तो बस हालत बुरी थी। बस मेरे फादर को पता लगा कि भाई इनका बुरा हाल है, ये पाकिस्तान वो केनिया से आए, वो हमको 3-4 महीने कैंपों में ढूंढते रहे, ढूंढते फिर वो एक यही स्टेशन पर पहुंचे। इसी छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे वालदा ने पूछा उसके, भाई साहब तुम ये लड़के को जानते हो जिसका नाम बिल्लू है? उसने कहा हाँ, वो छोटा सा बच्चा है वहां रहता है। तो वो हमारे फादर को वहां अपने लेके आया, तभी हमारा पहला मुलाकात हुई हमारे फादर।
और आपके रिश्तेदारों में से किसी ने एक हॉलीवुड की मशहूर मूवी भी बनाई है, वॉइस ट्राई की?
हाँ जी। मेरे रिश्तेदार, मेरी नीस है, जो मेरी नीस
आपकी है, भतीजी है।
हाँ, उसका नाम है गुरिंदर चड्ढा, तो उसने ये फिल्म बनाई है। अभी फिल्म खत्म हुई है, यहाँ हमने लगाई थी, ओपनिंग भी यहाँ की थी। उसका नाम है वॉइस रॉय हाउस। तो कैसे है ना कि जो विनर होता है, विक्टर होता है, वो हिस्ट्री लिखता है, लेकिन इसमें हमने जो स्टोरी उसने लिखी है विक्टर की नहीं है, उसने जस्टिस की लिखी है। सदियों से सब कट्ठे रह रहे थे, ब्रिटिश के आने के पहले भी इंडिया में मुसलमान भाई और सिख भाई और हिंदू भाई इकट्ठे रहे थे सदियों से, मुगल अंबार के पहले से भी। और एकदम कैसे ऐसे हो गया, हुए किसने ये काम कराया, वो फिल्म में दिखाया गया है कि भाई देखो जो मेन इंटरेस्ट था वो ब्रिटिश का था, क्योंकि एक किताब थी उसने लिखी जिसका नाम है नरेंद्र सिंह सरेला, वो था पीए टू माउंटबेटन, जो माउंटबेटन का सर था, उसने 30 साल के बाद वो किताब लिखी है। तो उसने ये दिखाया कि जो असली और जो डिवीजन हुई थी वो 1945 में हुई थी, 47 में नहीं। वो जो की गई डिवीजन वो ब्रिटिश ने जो चर्चिल था और आइजनहावर था उन्हों के जोर से हुई थी। उनका ये इंटरेस्ट था कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था या इंडिया का या पाकिस्तान का, उनको अपना ऑयल का पड़ा था और उनको रशिया का पड़ा था। ये थोड़ा बार बात आई है माउंट बैटन को, यू हैव टू डू इट।
आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कब आए?
मैं 75 में आया।
जब आपने दोनों ममालिक की तकसीम का जमाना देखा, उस वक्त से लेके आज तक आपने बहुत ऊंच नीच देखी, मद्दोजजर देखे, दोनों ममालिक के रहने वालों को एक ऑब्जर्वर की हैसियत से आप क्या एडवाइस करेंगे?
बहुत सिंपल एडवाइस है कि हमारे जब पहले हम इकट्ठे रहे थे तो अभी क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते? क्या तकलीफ है, क्यों पॉलिटिशियंस के पीछे भागते फिरते हैं?
पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से क्या सीख सकते हैं?
कि आप यही सीख सकते हैं कि डेमोक्रेसी सोसाइटी के साथ रहना चाहिए और इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये रिलीजन में काम करते हैं ना, नाम लेते हैं रिलीजन का और उनका एम अपना होता है, और लोगों को ट्रीट करें, मजहब को नहीं, क्योंकि वहां मजहब को कहते हैं कि नहीं जी मेरा मजहब कहता है तो मैंने यही करना है। भाई तुम्हारी कंट्री अगर वॉर में गई है तो यू हैव टू फाइट बिकॉज ऑफ योर कंट्री, और हमारे ये था कि मजहब के ऊपर लड़े हैं। मैं इंग्लैंड में भी 20 साल रहा हूँ और मैंने वहां भी यही देखा है कि अगर हमारे भाई के चारा रिश्ता बहुत है, आपस में खाना एक है, कल्चर एक है, बातें एक है, सब कुछ एक है, लेकिन जब मजहब की बात आती है ना तो लोग पैनिक कर जाते हैं। वजह यही है बस, इनको चाहिए कि पॉलिटिक्स में नहीं लाएं, अपना मजहब है, आराम से गुजारे, बहुत अच्छा देती है। मजहब कुछ नहीं कहता, मजहब को मुफ्त में यूज किया जाता है अपने अपने लिए।
जी हाँ, आप दास्तान सुन रहे थे बंटवारे की, और अभी आखिर में आपने बलवंत सिंह चड्डा की कहानी सुनी, और पैगाम सबका यही था कि ऑस्ट्रेलिया का मल्टीकल्चरलिज्म एक मिसाल है इस मुवालिक के रहने वालों के लिए जो अब तक सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे, गर खुदा लाया अल्लाह निगेबान।